तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। प्रश्न बताई, हे ब्राह्मण, हमारा समस्त वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति में पूरा हो गया। प्रश्न 31, हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञ अग्नि शास्त्र देशानुसार प्रज्वलित हुई है और आपके प्राग वृक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो गया हूँ। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से समग्र जगदीतल पवित्र हो गया है। वर्ष 32, हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहे मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। चैप्टर 19 और श्लोक नंबर 1। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलने तथा सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज ने धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप ही कहा था। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। और आज का श्लोक है, भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाला ब्राह्मण भृगुवंशी है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्माननीय वृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह से मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के ज्वलंत उदाहरण है। कोई ये तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी, क्योंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक में प्रशांत शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु होए। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी या शूद्र, चाहे जो भी, यदि वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो गुरु बन सकता है। कृष्ण का पूर्ण तत्व वेत्ता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु है। यहाँ पर भगवान वामनदेव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को ये भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पद भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज ने उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। ओम ज्ञानदि ब्रह्मदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वरूपपदामयं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखामितमस्त नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पशत देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च अतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी तीन बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला तो है शुद्ध भक्त कौन है, दूसरा महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ आश्रम में चाहे भक्त गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो तो भी वह पूजनीय है, और तीसरा है भक्ति के लक्षण। भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर जी एक बार एक स्टोरी कहे, एक ब्लाइंड व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति था, और वो ससुराल जाना चाहता था, तो लेकिन अंधा होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक गांव के चौराहे पे गया, उसने कहा जी मुझे ये जगह जाना है, ये मेरे ससुराल है, मेरे ससुर जी हैं, तो कैसे जा सकता हूँ? तो किसी ने कहा देखो आप पहले लेफ्ट लो, बाद में राइट लो, फिर स्ट्रेट जाओ, ऐसे कुछ बताया। लेकिन उसने कहा मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखाई कैसे देगा? तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कहा देखो एक बैल आ रहा है, ये बैल आपके ससुर का ही है, और ये कभी रास्ता भूलेगा नहीं। भले आदमी इंसान भर रास्ता भूल जाएगा, ये बैल कभी भूलेगा नहीं। आप काम करो, एक बैल के पीछे पीछे जाओ और फिर आप घर तक पहुंच जाओगे। तो ये ठहरा अंधा, उसने क्या कहा कि सोचा मन में कि अरे ये बैल कहीं इधर उधर चला जाएगा तो मैं फिर से लॉस हो जाऊंगा। उसने बैल की पूंछ को पकड़ लिया। अब बैल को पूंछ को पकड़ लिया तो बैल थोड़ी देर तक टॉयलेट करता रहा, बाद में बैल को लगा ये क्या, किसने मुझे पूंछ पकड़ के रखी है? तो फिर दौड़ने लगा और ये फिर घसीटते हुए जा रहा है आगे। तो कभी कीचड़ से जा रहा है, तो कभी जंगल से जा रहा है, कभी कांटों से जा रहा है, और धीरे धीरे फाइनली वो अपने ससुर जी के यहाँ पहुंच गया। ससुर जी कहाँ से आप, कौन है आप? तो उसने बताया कि मैं बैल की पूंछ को पकड़ के आया। तो कभी कभी तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इसका पर्पस बताते हैं कि कभी कभी हम लोग एसेंस भूल जाते हैं। जो चीजें हमें बताई गई है उसका एसेंस भूल जाते हैं और डिटेल्स में स्टक हो जाते हैं। जैसे हमारा जो भी चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सारे उपाधियां है। दीज आर ऑल डिटेल्स। एसेंस ये है कि हमें अपना हृदय सॉफ्ट करके कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होना है, ये एसेंस है। लेकिन हम लोग कभी फैनेटिक हो जाते हैं, कभी ये एक्सट्रीम जाते हैं, कभी वो एक्सट्रीम जाते हैं, और हम लोग एक्सटर्नल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम गृहस्थ है, तुम माया में हो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हुई हूँ, मैं कोई ब्रह्मचारी का अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि हमें एसेंस को ढूंढना है। कभी कभी तो ये भी होता है, अरे ये व्यक्ति ने धोती देखो कैसे पहनी है। कभी कभी वो गौरांग स्टाइल वाली धोती होती है ना, कभी सिंपल धोती, कभी हाँ ये धोती ऐसा पहना है, इसे कंठीमाला कैसी, बड़ी बड़ी है, राधे राधे भी लिखा है। तो कंठीमाला कैसी है, आपके तिलक कैसा है, धोती कुर्ता कैसा पहना है, या साड़ी कैसी पहनी, किस स्टाइल से पहनी है, वो भी जरूरी है, वैष्णव एटिकेट्स में आता है वो। लेकिन फिर भी एसेंस हमें जानना चाहिए। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये सारे उपाधियों को छोड़कर हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और वो किसे? ऋषिकेश। हमारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना। कभी कभी देखिए एडवांस डिवोटी कौन है या शुद्ध भक्त कौन है उसके माथे के ऊपर लिखा नहीं रहता ही इज अ प्योर डिवोटी, ऐसा कभी माथे के ऊपर लिखा रहता है नहीं। या कभी वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो व्यक्ति के माथे के ऊपर लिखा नहीं होता जैसे श्री राधे वरमंदी भगवान की जय। उस व्यक्ति के बिहेवियर से और उसकी साधना से हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना एडवांस है। इसीलिए हमारे आचार्य गुरु ने कभी भी हमारा प्रीवियस हिस्ट्री या कभी प्रीवियस लाइफ इसके ऊपर चर्चा नहीं की है। आप अभी इस लाइफ में अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हो, आपकी साधना किस प्रकार से है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने एडवांस है। जैसे आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, ये एक फैसिलिटी है आपको साधना अच्छे करने के लिए। अगर कोई ब्रह्मचारी है सन्यासी है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसे बहुत सारे मटेरियल एंटेंगलमेंट से बचकर वो अपना पूर्ण पूरा समय जो है भगवान की साधना में मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग मंगला आरती साधना जपा इसके ऊपर फोकस कर सकता है। लेकिन यही फैसिलिटी अगर कोई गृहस्थ है माता जी है प्रभु जी है वो भी अगर अपने लाइफ में साधना को प्रायोरिटी दे तो उन्हें भी प्रगति करने में उतना ही चांस होता है कि जितना ब्रह्मचारी और सन्यासी में होता है। जैसे एक बार मैं राधा गोपनाथ मंदिर के आंगन में हम लोग खड़े थे, चार पांच ब्रह्मचारी बातें कर रहे थे, तो मैंने सुनना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे तो सुनाई दिया। दो तीन माता जी और बाजू में थे और उसमें से एक माता जी चर्चा कर रही थी कि देखिए ये ब्रह्मचारी लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, ये उनको पूरा जीवन भगवान के मंदिर में रहते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं और कोई मटेरियल एंटैंगलमेंट नहीं है, कितने फॉर्चुनेट है ये लोग। तो मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि बहुत सही है, भगवान ने इतनी इतनी कृपा की है हमारे ऊपर कि इतना हमको चांस मिला है। लेकिन बाद में मुझे पता चला, मुझे अपने माइंड में सोच रहा था कि माताएं लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि ब्रह्मचारी कितने फॉर्चुनेट है वो मंदिर में रहते हैं, और ब्रह्मचारी अपने मन में सोचता है मैं अमेरिका कब जाऊँ अमेरिका जाके मुझे ये कब मिलेगा वो कब मिलेगा। अब मैं भी उसी में हूँ, मैं भी वही सब बुरे थॉट्स मेरे मन में भी आते हैं। तो हम लोग कभी एक्सटर्नल सिचुएशन से डिपेंड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कितना एडवांस्ड है। ये तो है हमारी साधना कितनी प्रॉपर है और हमारे एटीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे व्हाई वी डू एंड व्हाट वी डू, हम लोग कौन सी चीज किस लिए करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसलिए हम उससे हमको डिपेंड होता है। जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है धनुर्दास जी का। धनुर्दास जी, क्योंकि ये प्रपट में गृहस्थ आश्रम का है इसलिए मैं उसको लिया हूँ। धनुर्दास जी एक बार श्रीरंग मंदिर के सामने थे और रथ यात्रा जा रही थी श्री रंगनाथ जी की, लेकिन वो एक स्त्री से एक लड़की से प्रेम करते थे तो उनकी आंखें बहुत सुंदर थी, तो धनुर्दास जी उसकी आंखों की तरफ ही देख रहे थे, पूरा छाता लेके से बैठे थे और आंखों की तरफ भी देख रहे थे। तो प्रोसेशन जा रहा है लेकिन रंगनाथ जी की तरफ देखा नहीं उसने। तो रामानुजी ने चले कहा किसी ने कि उनको बुलाओ मेरे पास, तो वो आए, उन्होंने दिखाया कि यार रंगनाथ जी भगवान स्वयं जा रहे हैं और आप इनकी रथ यात्रा छोड़ के रहे माता जी की आंखों की तरफ देख रहे हो। तो बड़ा ऑनेस्ट व्यक्ति थे धनुर्दास जी, उन्होंने कहा कि देखिए भगवान है वो मानता हूं मैं, लेकिन ये स्त्री की आंखों से ज्यादा अच्छी आंखें मैंने कभी देखी नहीं है, तो क्या करूं मैं। तो धनुर्दास जी को रामानुज जी ने कहा ठीक कोई बात ना, इससे अच्छा देखना है आइए मेरे साथ। अंदर लेके गए और उनके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स दिया और रामानुजाचार्य ने उनको स्पेशल ब्लेसिंग किया और रंगनाथ जी की आंखें दिखाई, इतने सुंदर कमल पंखड़ी की जैसे भगवान की सुंदरता और उनकी आंखें देखकर कि शास्त्र में वर्णन है कि भगवान की आंखें एकदम कमल पंखड़ी के समान है, उनकी जो आई बॉल्स है वो एकदम मछली के समान है। वहां जैसे उनके आईबॉल्स ऐसे घूमते हैं जैसे मछली कैसे तालाब में या नदी में कैसे एकदम अच्छे से घूमते हैं, रिगली ऐसे रॉयली घूमते हैं, उस प्रकार से उनकी आंखें घूमती हैं और उनकी आंखों में रेड बॉर्डर्स हैं, पूरे लाल इसमें लाली छाई हुई है। तो इस प्रकार से इतनी सुंदर आंखें देखने के बाद मैंने कहा ये बात तो सही है। फिर उन्होंने कहा मैं छोड़ दूँ स्त्री को, रामानुज ने कहा नहीं इनके साथ विवाह कर लो आप। उनके साथ विवाह किया, साथ में गृहस्थ लाइफ जीने लगे। और क्योंकि वो इतने एडवांस हो गए गुरु महाराज की सेवा में और बाकी पूरे मंदिर की सेवा और बाकी की फुल डिटैच एंड पूरे अपनी वाइफ के साथ सेवा करने लगे, तो कुछ आश्रम के लोगों को लगने लगा कि अरे हमारे गुरु महाराज तो माया में तो नहीं जा रहे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो उनको लगा, तो रामानुजी ने कहा ठीक है, कुछ ब्रह्मचारी को भेजा। उन्होंने कहा कि देखो ये धनुर्दास है ना, एक बाहर गया है, उसकी बीवी अकेले घर में है और ये बहुत बहुत अटैच लोग हैं, एक काम कर दो, वो सो रही होगी, उसके शरीर से जो भी आभूषण है वो सब उठा के लेकर आ जाओ। तो तीन चार लोग गए, तो माता जी ऐसे एक साइड में सोई थी, तो उन्होंने एक साइड से ऑर्नामेंट्स निकाल, ये था है इस रूप में है, तो उन्होंने एक साइड से ऑर्नामेंट्स निकाल दिए और दूसरी साइड से निकाल गए, तो माता जी तो सोई नहीं थी, तो उनको लगा कि उनको आसान कर देते हो, तो ऐसे दूसरी साइड में मुझे करवट बदलने लगी, सोचा उनको एक निकालने के लिए आसान हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी भाग गए, उनको लगा अरे उठ गई होगी माता जी अभी, तो उठ के चले गए। और फिर रामानुज जी ने कहा हाँ ठीक है, लेके आए ना सब गहने वगैरह, अब जाके देखो कि ये जो धनुर्दास वापस जाएगा तो अपनी बीवी के साथ और दोनों में कितना भी झगड़ा होने वाला है, क्योंकि बहुत अटैच है वो लोग आभूषण घर पैसा वगैरह से। तो जाके फिर से खिड़की से झांक के देखने लगे कि क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी उनकी। तो धनुर्दास वापस आए, उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए आश्रम के कुछ लोग आए थे, शायद उनके मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भगवान की सेवा में कुछ पैसे की कमी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने मेरे से मेरे आधे साइड के गहने उठा के लेके गए, लेकिन मैं दूसरी साइड करवट बदलने लगी तो भाग के चले गए। तो धनुर्दास ने कहा मूर्ख स्त्री, तुझे ठीक से करवट चेंज नहीं करना आता था क्या, तुम तो अगर अच्छे से करवट चेंज कर दी तुमको दोनों साइड का भी आभूषण निकालने के लिए आसान हो जाता ना। तब उन लोगों को लगा कि अरे हमने गलती कर दी, व्यक्ति अटैच और डिटैच ये हमारे अंदरूनी बात है, एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, इसीलिए साधना के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि वो कभी किसी गृहस्थ या ब्रह्मचारी या सन्यासी वानप्रस्थ इनको एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज करने के लिए नहीं कहे। जैसे वो साउथ इंडिया जा रहे थे तो उनको कूर्म ब्राह्मण मिला, तो कूर्म ब्राह्मण जी महाप्रभु की सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो गए, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तो बाद में जब महाप्रभु आगे निकले तो कूर्म ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु मैं अभी पूरा अपना घर परिवार सब त्याग करके मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, बस ये बहुत माया है संसार में, निकल जाता हूँ आपके साथ आता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा ये मरकर वैरागी बनने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थिति में हो आप उसी स्थिति में रहो, अपने परिवार की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो और भगवान की सेवा करो, उसमें तुम ही संतुष्ट हो जाओगे और अच्छे से सेवा कर पाओगे। भक्तिनाथ ठाकुर लिखते थे भजन में लिखते हैं, जेदी नगरी है भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। भक्तिनाथ ठाकुर जी को 11 संतान थी, 11 बच्चे थे, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं मैं जब भी घर आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे घर में भजन कीर्तन चल रहा है तो मुझे लगता है कि मेरा घर ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोलोक वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन ही है मेरा घर। तो वही सिचुएशन हम लोग गोलोक वृंदावन सब जगह कर सकते हैं। तो ये पहला प्रिंसिपल था कि चैतन्य श्री प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम, मतलब चाहे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचारी आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति कितना डिटैच है वो इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति हमेशा परंपरा गुरु और वैष्णव के ब्लेसिंग्स के और गाइडेंस के अंडर में ही सेवा करनी चाहिए, जैसे वामन देव यहां लिख रहे हैं कि तुम बलि महाराज बहुत फॉर्चुनेट हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। क्यों? तुम प्रहलाद महाराज से शुद्ध भक्त के परंपरा में आते हो और उनके गाइडेंस पर अपना जीवन जी रहे हो, यही आपकी बहुत बड़ी सौभाग्यता है। हमारे लाइफ में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा कैसे होता है? माँ का दूध पीने से ना। दूसरा तो उसका कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, सिर्फ माँ के दूध से ही उसका पालन पोषण होता है। उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी हम जो भी चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, हमारे अंदर जो भी भगवान के प्रति कुछ आसक्ति है, थोड़ा प्रेम है, ये सारी हमारे परंपराओं की देन है, हमारे गुरु और वैष्णव की देन है। लेकिन कभी कभी हम लोग थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद, भक्ति में टाइम स्पेंड करने के बाद अभी लगता है कि अरे ये तो मेरा ही है, मैं ही सब कुछ हूं। जिस थाली में खाया है उसी को हम ठुकराते हैं। इस्कॉन की वजह से, प्रभुपाद की वजह से हमको कुछ पोजीशन मिल जाता है, थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है, तो हमको लगता है कि अरे मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। लेकिन बाद में फिर उसी के अगेंस्ट हम लोग कुछ चर्चा शुरू कर देते हैं, उसी के अगेंस्ट जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा जो है, ये परंपरा की वजह से हमारे पास जो भी नॉलेज है, साक्षात्कार है, उनकी वजह से ही है। जैसे मैं सोच रहा था, हमने भक्ति में आने से पहले बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, या इंडिया में कृष्णा राधे राम गोविंद, ये किसने नहीं सुना है? सबने सुना है। लेकिन उसका कभी परिणाम हमारे हृदय के ऊपर हुआ क्या? कितने लोग हैं जो हमेशा राधे कृष्णा गोविंद ये रस्ते पे भी गाते हैं, बॉलीवुड में सॉन्ग भी गाते हैं, लता मंगेशकर भी गाती है, सब लोग गाते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में कितने लोग शुद्ध भक्त बने हैं कृष्ण के? लेकिन वही व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जैसी परंपरा का शेल्टर लेता है, जैसी वैष्णव वृंद के संग में आते हैं और नाम जब स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसी जादू होती है। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर वो व्यक्ति अपने आप चार नियम पालन स्टार्ट करता है, पैर दूसरे छोड़ना शुरू कर देता है, चाय कॉफी छोड़ता है, और जो गीता का ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल समझ में आना शुरू हो जाता है। और फिर जो पहले हम लोग कभी अगर कृष्णा कौन है, वी वुड कंसीडर लाइक कृष्णा इज वन ऑफ द 33 करोड़ डेमिगॉड्स, भगवान ये भगवान है या फिर ऐसा स्पेशल पर्सनालिटी, ऐसा कभी नहीं। हाँ, वो भी देवताओं की लिस्ट में वो भी एक है। लेकिन अभी प्रभुपाद जी के क्षेत्र में आने के बाद, वैष्णव के संग में आने के बाद, अभी पता चलता है कि नहीं, कृष्णा सिर्फ ये कोई वन ऑफ द डेमिगॉड्स नहीं है, ये भी भगवान है। ये जो ब्लेसिंग्स है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर वो कैसी कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन बिकॉज वी आर सिंपली कनेक्टेड टू प्रभुपाद एंड कनेक्टेड टू संप्रदाय आचार्य, इसलिए वो हमारे ऊपर ये परिणाम आ जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब सेवा संगम गए तो वहां पर एक टेलर था, मुस्लिम समाज का था, तो क्योंकि वो टेलर को श्रीवास ठाकुर के प्रति बहुत अफेक्शन था, उनके कपड़े सिलाता था और बड़े अच्छे से प्रेम से उनके कपड़े सिला के देता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनको गंगा के तट पर मिले और मुस्लिम से और टेलर से कहा, अच्छा तुम श्रीवास ठाकुर के कपड़े सिलाते हो? उन्होंने कहा हाँ जी, मैं बड़े प्रेम से करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह देखा नहीं कि तुम कौन हो, किस कास्ट हो, कोई नहीं, तुम श्रीवास ठाकुर से प्रेम करते हो और श्रीवास ठाकुर का तुम्हारे ऊपर अफेक्शन है, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे देता हूँ। और श्रीवास ठाकुर के जस्ट कनेक्शन से और सिर्फ सेवा से वो व्यक्ति को शुद्ध मुक्ति मिल गई। श्रीवास ठाकुर के घर में एक और सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, उसका नाम था दुखी। तो महाप्रभु ने उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा दुखी। महाप्रभु ने कहा, ये तो कोई नाम ठीक नहीं है, दुखी तो कोई अच्छा नाम नहीं है, आज से तुम्हारा नाम सुखी है, सुखी। और महाप्रभु ने कहा, सिर्फ नाम सुखी नहीं, तुम रियली सुखी हो जाओगे, तुम्हारे जीवन के सारे दर्द, एंजाइटी, तकलीफें, सफरिंग सब नष्ट हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। जस्ट बिकॉज इट वॉज शी वॉज कनेक्टेड टू श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर से कनेक्टेड थी और उनकी सेवा करती थी, अपने आप उनको ब्लेसिंग मिल गया। राधा राज बिहारी मंदिर में एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और बड़े बड़े उनके लीडर्स उस टाइम के सन्यासी से बाकी लीडर्स लोग प्रभुपाद जी का जो टावर है, प्रभुपाद जी का जो रूम है, उसमें बैठ के चर्चा करते, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। उतने में एक बहुत गरीब आदमी ऐसा लेबर था, उसने गार्डन से कुछ फूल उठाए, उसका एक ऐसा गुच्छा बनाया फूल का, और सीधा बड़े नम्रता से उस हॉल के अंदर एंट्री की जहाँ प्रभुपाद बाकी सारे भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, और जाकर प्रभुपाद जी के ऐसे चरणों में ऐसे फूल रख दिए, कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, और फिर से चला गया। प्रभुपाद जी और सारे लोग सिर्फ देखते रहे, एंड देन देयर वर टीयर्स इन प्रभुपाद आईज। गिरिराज स्वामी महाराज जी को स्टोरी रिकॉल करते हैं, प्रभुपाद जी रोने लगे और उन्होंने कहा सारे भक्तों को कि देखिए ये सिंपल व्यक्ति है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, आके सिर्फ दो चार फूल मेरे पास दे दिए। मेरे जैसा अगर कोई साधारण व्यक्ति किसी के फूल देने से इतना मूड हो सकता है, किसी के प्रति गर्व इतना प्रेम आ सकता है, जस्ट इमेजिन करो कृष्ण के प्रति। अगर कोई प्रेम से भगवान को फूल ऑफर कर रहे है तो वो कितना डियर हो जाता है भगवान से। मतलब ये एक्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें भावना जो है सरेंडर की है और प्रेम की है, इसीलिए उस व्यक्ति को कृपा मिल गई। एक व्यक्ति पंडाल में जब क्रॉस मैदान में बॉम्बे में प्रोग्राम चल रहा था, एक आया व्यक्ति और प्रभुपाद जी के प्रवचन से पहले, स्वामी जी आई नो ऑल 700 श्लोक बाय हार्ट, मुझे 700 श्लोक सारे बाय हार्ट है, बोल के दिखाओ, सुना के दिखाओ आपको। तो सारे लोग इंप्रेस हो गए, श्याम सुंदर को वाले वाले को क्या है ये 700 श्लोक पूरे बाय हार्ट है इसको। प्रभुपाद जी ने उसको ध्यान भी नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने कहा जरा एक श्लोक भी अगर तुम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल उतारो ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो प्रभुपाद जी ने मतलब अगर आपको कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम चाहिए, अगर आपको कोई और दूसरा गोल है, नेम फेम प्रेस्टीज पावर पोजीशन, तो बात अलग है। लेकिन अगर किसकी अगर सिर्फ सही में कृष्ण भक्ति चाहिए, उसको और कोई नहीं चाहिए, तो देन ही हैज टू रिमेन एंड जस्ट। प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद जी ने कहा इफ यू वॉन्ट टू लव मी लव माई डॉग, मुझसे प्रेम करते हो ना तो ये मेरे कुत्ते से प्रेम करो। तो उसी प्रकार से कृष्ण की शरण जाना मतलब उसके वैष्णव जो है उनके जो डियर है उससे सर्व करना। भक्ति सरण ठाकुर जी के पास कोई भी आता था मिलने के लिए तो प्रभुपाद जी भक्ति सरण ठाकुर जी कहते थे उनको पहले पूछो कि वो कौन है। उसने अगर कहा कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का भक्त हूं, तो उसको कहा उसको कहना कि भक्ति सरण ठाकुर जी प्रभुपाद जी बहुत बिजी है अभी नहीं मिल सकते। और उन्होंने अगर कहा कि नहीं नहीं मैं उनके भक्तों का दास हूं तो मेरा समय उसका हमेशा उसके लिए है। तो अगर हम लोग शेल्टर वैष्णव का लेंगे तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। प्रभुपाद जी के वैष्णव के इसमें संघ में अगर सॉरी अगर वैष्णव के शेल्टर में आएंगे तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। एक बार जस्ट बैठे बैठे सोच रहा था, कभी कभी हम लोगों को लगता है कुछ साल वैष्णव सेवा करने के बाद, कुछ चैंटिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं भी सही में ऐसे हो गया हूँ, मैं अपने आप के ऊपर मतलब मैं अपना खुद का रक्षण कर सकता हूँ, मैं अपना खुद का भक्ति कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी डेंजरस पोजिशन है, मैं आपको वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए बता रहा हूँ। अगर हमें जिस दिन लगेगा कि मुझे किसी शेल्टर की जरूरत नहीं है, समझना हमारा वो एरोगेंस है। भक्ति में भी कभी कभी ऐसे लगता है, वैसे होता है एक्चुअली आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 20 इयर्स इन द आश्रम, दिस इज माय स्मॉल रियलाइजेशन कि कभी कभी वैष्णव भक्ति में आने के बाद ऐसे लगता है कि अरे मैं तो जान चुका हूँ भगवद गीता भागवत चैतन्य चरितमृत सारे श्लोक सब कुछ हो गया यार, वो भी मंदिर इतने यात्रा हो गई, इतनी यात्रा हो गई, इतना ये हो गया, वो हो गया, अब क्या, अब तो मैं थोड़ा सीनियर हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और हमारा इस दुनिया में आने का यही तो एक मेन रीजन है कि हम लोग अथॉरिटी स्वीकार करते नहीं है, किसी का शेल्टर स्वीकार करते नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा अगर तुमसे एक स्टेप भी कोई आगे है उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। हमसे अगर भक्ति में अगर एक स्टेप भी कोई आगे है उसको हम लोग जरूर स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो भक्ति में एक दिन भी आगे क्यों ना हो, उसकी रियलाइजेशन, उसकी शुद्धता, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। और इस दुनिया से वापस जाने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमसे सिर्फ एक ही टेस्ट ली जाएगी, हमारी एक ही परीक्षा होगी, आर यू सरेंडर। सरेंडर का मतलब है डू यू रियली एक्सेप्ट सम अथॉरिटी। और कभी कभी हमको लगता है अथॉरिटी स्वीकार करना मतलब बाप रे सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मतलब कितना बड़ा ये अत्याचार है, अन्याय है। और ये सेवन मतलब इस दुनिया में ऐसा होता है कि सर्वेंट मतलब टॉर्चर, किसी के अगर तो आप सर्वेंट बन जाओ, किसी के अगर दास बन जाओ तो आपकी जीवन भर उसकी सेवा करते रहो करते रहो, वो आदेश देते रहेगा देते रहेगा। ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्विस यही भक्ति है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्विस ही सबसे बड़ी भक्ति है। इवन कृष्णा आल्सो वांट्स टू सर्व, जो स्वयं परम भगवान है वो भी अपने भक्त के दास बनने के लिए तैयार है। जैसे अर्जुन पार्थसारथी मंदिर है, पार्थसारथी बन के उनकी दास सेवा करते हैं, यशोदा माई की सेवा करते हैं, नंद महाराज के शूज अपने सर के ऊपर ले जाते हैं, सारे भक्तों की स्वयं दास सेवा करते हैं। तो ये जो भावना है दासत्व की या सेवा की भावना, किसी ना किसी को हमारा सुपीरियर मानना, ये जैसे जिस दिन हमारे हृदय में पूरी तरह से हम लोग कन्विंस हो जाएंगे उस समय वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए फिट होता है। नहीं तो मनोरथे नासतो धावतो गहि, जो माइंड में आए वो अगर करते रहे तो कितना भी बड़ा स्कॉलर कितना भी बड़ा पंडित हो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा। एक बार यही दिल्ली में एक बार एक आर्य समाज का एक व्यक्ति था, उसने प्रभुपाद जी को पूछा स्वामी जी मैं अपना परिवार का ख्याल करता हूँ, कोई किसी प्रकार का पाप नहीं करता हूँ, जो देश के नियम है वो पूरे पालन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो भी मॉरल प्रिंसिपल से वो पालन करता हूँ, तो मुझे भगवान की क्या जरूरत है, बराबर मैं पाप तो करता नहीं हूँ, मेरे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी अच्छे से करता हूँ, तो फिर मुझे अभी ये तुम कृष्ण भक्ति भी ये क्यों बता रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने उनको इतना मस्त समझाया प्रभुपाद जी ने कहा देखो ये जो तुम मॉरलिटी के प्रिंसिपल फॉलो कर रहे ना ये ज्यादा देर तक कर नहीं पाओगे, क्योंकि मनोरथ रथे नासतो धावतो गहि, आप तुम्हारा माइंड ठीक है, सारी सिचुएशन फेवरेबल है, इसलिए तुम अभी अच्छे से मॉरलिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। जिस समय तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाएगी मोरालिटी, उस समय तुम उसको ठुकरा दोगे। जैसे कौरव थे और पांडव थे, जब कौरव के बीच में प्रॉब्लम आ गई इंद्रिय तृप्ति में, तब तक वो सब मोरालिटी मोरालिटी करता था, लेकिन जब देखा अरे मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा हो रही है मोरालिटी प्रिंसिपल, निकाल दो उसको तोड़ दो। पांडवों ने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को त्याग नहीं किया। ऐसी सिचुएशन की उनकी पत्नी को डिस्टर्ब हो रही थी, उस समय भी उन्होंने शास्त्र के आदेशों को कभी पालन अब ये नहीं किया, अन्य मतलब उसको ठुकराया नहीं, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। और भगवान का भक्त का मतलब क्या है, वो अपने लाइफ में एक लिमिट फिक्स रखता है, मेरे जीवन में चाहे कोई भी हो कुछ भी हो मैं इस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अपने गुरु वैष्णव और कृष्ण इनके जो आदेश है इनके आदेशों को पालन कभी इसको क्रॉस करके आगे कभी जाऊंगा नहीं। लेकिन ये जो लिमिट है जो बॉर्डर है ये अभक्त के लाइफ में कभी होती नहीं है, इसलिए वो मॉरल प्रिंसिपल भले ही अभी फॉलो करता होगा लेकिन वो कब उसको छोड़ देगा, मैं तो जब बोले ना बोले तो उसको छोड़ देगा। इसीलिए हमारे लाइफ में भी इवन आर Upsetness also should dissolve in some person. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं अभी इतना अपसेट हूं, इतना अपसेट हूं, इतना दुखी हूं, इतना दुखी हूं कि मेरे अपसेटनेस को कोई दूर ही नहीं कर सकता, मेरे दुख है उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं, वो भी एक एरोगेंसी है कि मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना दुखी हूं, मैं इतना अपसेट हूं कि ना मेरे गुरु मेरे प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ना महाप्रभु मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते और ना कृष्ण मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। इसका मतलब तू खुद को भगवान समझ रहा है ना, है कि नहीं? मैं इतना महान हूं, इतना महान हूं कि ये लोग भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। सो साधका मीन्स हमारे लाइफ में एक एक व्यक्ति या ऐसे सिचुएशन फिक्स होना चाहिए, मैं अपने माइंड से जो भी प्रॉब्लम होगा जो होगा, लेकिन अगर इन्होंने कहा ना बस मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा ब्लाइंडली। ये जो एक्सेप्टेंस है ये है शेल्टर। तो हमारे लाइफ में हमारे जो आचार्य है, परंपरा है, ये हमारे शेल्टर होना चाहिए। और जब हम अपने परंपरा से शेल्टर लेते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा हमारा आचार्य रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई एक सुंदर युवती है, 20 साल की एक लड़की है वो, एंड देन शी इज मैरिड टू एक व्यक्ति के साथ, उसकी इसका विवाह हो गया और वो अपनी ससुराल गई, तो जैसे ही अभी विवाह होके जस्ट 15 दिन हो गए, घर गई, ससुराल गई, उसका विवाह हुआ सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, लेकिन जैसे ही गई तो एक स्त्री बोलती है, ये आपकी सास है, ये आपके ससुर जी है, ये आपका देवर है, ये आपकी जेठानी है, आपकी ये है वो है। शादी हुई एक व्यक्ति के साथ, लेकिन तुरंत सबके साथ रिलेशनशिप बन गया ना, है ना? तो उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति के साथ शादी हो गई लेकिन रिलेशनशिप सबके साथ अपने आप ही जम गए, उसी प्रकार से अगर हम लोग अपना कनेक्शन परंपरा से लगाएं तो सबका ब्लेसिंग्स अपने आप हो जाता है। कृष्ण का संबंध आ जाता है, राधा का भी ब्लेसिंग मिलता है, बाकी सखी गोपी जो भी है सबका कनेक्शन, सबका ब्लेसिंग्स आपके पास मिल जाता है। जस्ट सिंपली गेटिंग मैरिड टू कनेक्टेड टू परंपरा, यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन। और जैसे ध्रुव महाराज जी, उनके पास जब कृष्ण आए, दर्शन दिए तो पूछा क्या चाहिए तुम्हें, उन्होंने कहा हे प्रभु मैं तो यहाँ कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, मुझे ऐसा राज्य दो, ऐसा राज्य दो कि मेरे पिता, मेरे दादा परदादा और ब्रह्मा जी जो है उनसे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए था, लेकिन आपकी सुंदरता को देखकर और मुझे लगता है कि ये सब कांच के टुकड़े, टूटा हुआ कांच उसके टुकड़े, उसको लेकर मैं क्या करूं, इसलिए मुझे आप अपनी सब शुद्ध भक्ति ही दे दीजिए। हमारे जीवन में भी ये जो उपाधियों के साथ जो आता है ना, अगर हम लोग समझे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो जब हम लोग उपाधि लगा देंगे तो उसके साथ साथ बहुत कुछ चीजें आएंगे, पोस्ट पोजीशन पावर नेम फेम प्रेस्टीज ये वो बहुत सारा इसका एक साइड ये आ जाएगा। अगर हम उसमें लग जाए तो फिर कृष्ण बोलेंगे देखिए कृष्ण को आपको देने के लिए क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर पुण्य कार्य करके अगर अच्छे से बड़े बड़े इंद्र तृप्ति ले सकता है तो भगवान अपने भक्तों को क्यों नहीं देंगे। श्रीधर कोलावेजा को चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर मांगो कुछ भी मांगो मेरे से, तुम अगर चाहो मैं तुमको इंद्र बना देता हूं, अभी स्वर्ग का राजा बना देता हूं और सारा जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है तुम्हारा। लेकिन श्रीधर कोलावेजा ने कहा भगवान मैं इसको लेके करू क्या, मैं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए बस। जैसे कोई अगर जैसे वही एग्जांपल, अगर सुंदर लड़की है वो शादी करके घर गई है और 15-20 दिन के बाद कोई उसे कहता है देखो बेटी ऐसी बात है कि हमने अभी डिसाइड हमने चेंज कर दिया, हमारा डिसीजन था वो चेंज कर दिया, तुम चाहे तो ये घर लो, प्रॉपर्टी लो, सब कुछ लो, लेकिन तुम्हें ये व्यक्ति आपका पति नहीं मिल जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी तुमको सब मिल जाएगा। तो लड़की कहेगी अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे से ये पूरा प्रॉपर्टी ले लो, सब कुछ ले लो, चाहे तो मेरे गहने भी ले, सब निकाल के देती हूँ, आप ले पूरा ले लीजिए, लेकिन मुझे वो मेरा व्यक्ति मेरा पति दे दो, वो अगर आप देंगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है इस दुनिया में रह के भी। उसी प्रकार से हमें भी भक्ति में आने के बाद जितना हम लोग एडवांस होते हैं, जितने हम लोग अटैच होते हैं, मतलब भक्ति में प्रगत होते हैं, उस चीज से हमें अपना इस दुनिया से डिटैचमेंट और कृष्ण के साथ अटैचमेंट, ये हमारा प्रोपोर्शन आगे जाना चाहिए। सो आप चाहे किसी भी आश्रम में रहो, लेकिन ये हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए मेरा इस दुनिया के प्रति डिटैचमेंट कितना हो रहा है और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अगर दो चीजें हो रही है ना, देन डजंट मैटर विच आश्रम यू बिलोंग, विच आश्रम यू स्टे इन, वो कुछ मैटर नहीं करता। और इस प्रकार से फाइनली भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान अगर फिर भी अगर मुझे हजारों लाइफ टाइम लेने के लिए जरूर पड़े मेरे कर्मों के हिसाब से, तो भी कोई बात नहीं। कीट जन्म हो जथात वा दास, आप भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि हे प्रभु आप मुझे किसी भी घर में जन्म दीजिए, किसी भी योनि में जन्म दीजिए, लेकिन जहां आपका दास हो, आपके भक्त हो, उनके घर में एक दास के रूप में मुझे सेवा मिल जाए तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। जय श्री प्रभुपाद की। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को मैं प्रवचन में अगर मैंने आपको किसी के फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो क्षमा कर देना। आपका कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
धन्यवाद प्रभु, बहुत आपने रियलाइजेशन के साथ बोला। आपने बोला जैसे आप किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ब्लाइंडली मान लें तो पूरी गुरु पर भाई कृपा मिलेगी। कलयुग में इस तरह का ब्लाइंड पूरा फुल सरेंडर करना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि कैसे इस बात को
एक्चुअली मेरा मतलब वो ब्लाइंड मतलब वो नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जब तक उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी आपको पता नहीं चलती है तब तक आपको उसका डाउट करना ही चाहिए। क्योंकि व्यक्ति सिर्फ सामने देखने से, सिर्फ ड्रेस अच्छा धोती कुर्ता कितना 100 रुपये 200 रुपये में आ जाता है, सैफरन कपड़ा 200 रुपये का कुर्ता, 200 रुपये की धोती, तिलक 10 रुपये का, कंठी माला 25 रुपये की, 400 रुपये में उत्तम आदि घर है ना। तो वो अगर ऐसा देख के अगर हम उसको सरेंडर करेंगे तो उसका मतलब नहीं है। हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसको टेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप डाउट ही करते रहोगे जिंदगी भर तो अगर समझो कोई व्यक्ति अभी है इस कौन में 40 साल 50 साल बेचारे अपना जीवन दे दे के मर मर के सेवा कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना जीवन पूरा दे दिया है और 50 साल तक भी उसका डिसाइपल उसके ऊपर डाउट ही कर रहा है कि महाराज अभी तक तो मुझे पता नहीं चला कि आपकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, आप प्योर है कि नहीं है। अरे तो डाउट करने का भी एक लिमिट है और एक प्रोसेस है। उतने समय तक आपको हमेशा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, उसको ऊपर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू कम टू नो जेन्युइन है व्यक्ति, सही में भगवान से प्रेम करता है, ये तो दिखाई देता है हमारे सामने सामने दिखाई देता है। देन फिर उसके बाद उसके आदेशों को फॉलो करो। तो अफकोर्स जरूरी नहीं है कि पहले दिन से आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, लेकिन कभी कभी होता है अगर सपोज लाइक इफ यू नो सम पर्सन लास्ट 50 years इज इन प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, सब कुछ ठीक ठाक है, अगर उस व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उसे फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है, उस टाइप का ब्लाइंड बता रहा था मैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, राधे रमण भगवान की जय, प्रभु की जय।